नमस्कार। सीएफटीआरआई की अपनी इस पाक्षिक ऑडियो डाइजेस्ट थाली टेल्स में आपका स्वागत है। थाली टेल्स आपको पोषण, खाद्य अनुसंधान, स्वच्छता और सुरक्षा संबंधी उपयोगी जानकारी प्रदान करेगा। प्रस्तुत है भाग एक, प्रथम अंक, 8 मार्च 2019। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं चावल, एक अद्भुत फसल, ऊर्जा प्रदान करने वाले सैकराइड्स, खाद्य को रंग प्रदान करने वाली हल्दी जैसे विभिन्न विषयों पर जानकारी, और अंत में पीने के पानी पर डॉक्टर एम ए श्रीनिवास से एक वार्ता। थाली टेल्स, भला यही क्यों? आइए जानते हैं सीएसआईआर सीएफटीआरआई के निदेशक डॉक्टर केएसएमएस राघवराव जी से।
नमस्कार। थाली टेल्स प्रोग्राम इंग्लिश में बहुत सफल हुआ। इसी प्रोत्साहन के साथ यदि हम देश के सभी नागरिकों को हिंदी में भी ये जानकारी देने का प्रयत्न कर रहे हैं। यदि आप देश को स्वास्थ्यता के ओर देखेंगे तो गरीब लोगों को कुपोषण का समस्या बहुत भारी है। यहां तक संपन्न परिवारों में भी समस्या दिख रही है। कई प्रकार की पोषण संबंधी समस्याएं क्यों मिल रहे, इसका संशोध किया तो ऐसा दिखेगा, सही आहार, सही व्यायाम और सही आराम ना मिलने के कारण ये सब समस्या उत्पन्न हो रही है। सीएफटीआरआई मैसूर एक ऐसा संस्था है, इसमें ये पहलुओं पे शोध किया जा रहा है। इसका लाभ आम आदमी तक निशुल्क पहुंचने में हम प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हम इससे संबंधित जानकारी आसानी में उपलब्ध सोशल मीडिया के माध्यम से दे रहा है। इससे लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागृति बढ़ेगी और उनकी जरूरतों को काफी हद तक पूरी हो जाएंगे और देश का नागरिकों को संपूर्ण विकास संभव हो पाएंगे, जिससे खुशहाली आएगी। धन्यवाद। जय हिंद।
चावल, एक अद्भुत घास जैसी दिखने वाली फसल। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, यदि आप मुझे चावल देंगे तो मैं उसे आज एक दिन खा पाऊंगा, यदि आप मुझे चावल उगाना सिखाएंगे तो मैं उसे हर दिन खा पाऊंगा। जी हाँ, चावल एक ऐसा खाद्य है जो प्रतिदिन खाने में उपयोग होता है, चाहे वह एशिया हो, यूरोप हो या अमेरिका। हालांकि चावल हमारे भोजन में कब शामिल हो गया, यह विवाद का विषय है, लेकिन यह 8000 ईसा पूर्व प्राचीन पुरातात्विक स्थलों से भी पाया गया है। यह दुनिया में दक्षिणी ध्रुव को छोड़कर लगभग सभी जगहों पर उगाया जाता है। समय, स्थान और जलवायु की विविधता होते हुए भी यह स्वाभाविक है कि इसे अद्भुत घास कहने की बजाय अद्भुत अनाज कहा जाए। आकार के अनुसार चावल की कई किस्में हैं। इनमें लंबे, मध्यम और छोटे चावलों से हम परिचित हैं। इसके अलावा रंगीन चावल भी होते हैं जो एक जैसे नहीं होते। लाल चावल के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, पर क्या आप जानते हैं कि इनमें भी ऐसे किस्म हैं जो गाढ़े काले रंग के होते हैं? बर्मा चावल एक ऐसी किस्म है जो पूर्णतः काली होती है। यदि स्वाद यानी फ्लेवर की बात करें तो बासमती चावल को कैसे भुलाया जा सकता है, पर आपको बता दें कि बासमती फ्लेवर वाले चावलों की सिर्फ एक ही किस्म है। इनके अलावा कुछ किस्में पौष्टिकता पर आधारित होती हैं। साथ ही उसना चावल यानी पारबॉइल्ड राइस, भाप से आधे पकाए गए चावल यानी हाफ स्टीम राइस और कच्चे चावल भी होते हैं। ये इस बात पर निर्भर करते हैं कि धान का प्रसंस्करण किस प्रकार किया गया है। चावल का संबंध पोसिया या ग्रामीण परिवार से है। इनमें गेहूं और मक्के के साथ लगभग सभी अनाज शामिल होते हैं। अनाज घास की तरह उगने वाली फसल का दाना होता है, जैसे कि चावल। और सभी प्रकार के अनाज के तीन अलग अलग भाग होते हैं, जिन्हें एंडोस्पर्म, जर्म और ब्रान कहते हैं। इनकी गुणवत्ता, पकाने का तरीका और उनमें निहित पोषण इस पर निर्भर करता है कि ये तीनों भाग किस प्रकार बने हैं, यानी इनका कॉम्पोजिशन क्या है। वनस्पति विज्ञान की दृष्टि से चावल जीनस ओराइजा से संबंधित है। घरेलू चावल के दो किस्म होते हैं, एशिया में उगने वाले चावल ओराइजा सटाइवा और अफ्रीका में उगने वाले चावल ओराइजा ग्लैबरिमा के नाम से जाने जाते हैं। दोनों ही वैश्विक स्तर पर उगाए जाते हैं। चावल के पौधे रूप स्वरूप और संरचना में अन्य घास जैसे ही होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे ठहरे हुए पानी या गीली मिट्टी में उगते हैं। यह एक मोनोकॉट है जो बारहमासी पौधों की तरह जीवित रह सकते हैं, लेकिन आम तौर पर ये अर्धवार्षिक फसल के रूप में ही उगाए जाते हैं। सर्वप्रथम चावल के छोटे पौधे उगाए जाते हैं और उन पौधों को खेतों में रोपकर अन्य पौधे उगाए जाते हैं और फिर पूर्णतया पोषित बीजों की कटाई की जाती है। हम सब ये जानते हैं कि कटाई के बाद चावल की फसल को धान कहते हैं। सभी अनाजों की तरह धान भी एक संपूर्ण बीज होता है। धान के एक खोल में एक ही बीज होता है। एक खोल के कई परत होते हैं। सबसे ऊपरी भाग, जिसे हस्क कहते हैं, पीले रंग में और सख्त होता है, जो कि दाने का आवरण होता है। हस्क यानी ऊपरी खोल सिलिका और सेल्यूलोस से बना होता है। सिलिका ऐसा पदार्थ है जिससे रेत बनती है और सेल्यूलोस कपास में मौजूद होता है। दूसरी परत को ब्रान यानी भूसी कहते हैं। इसमें फाइबर यानी रेशा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन और वसा पाए जाते हैं। चावल में यह ब्रान अत्यधिक पोषक तत्व होता है। चावल के दाने के निचले हिस्से में एम्ब्रियो होता है, जिसे जर्म कहते हैं, और इसे बोने पर एक नया पौधा निकलता है। वास्तव में धान का सबसे अंदरूनी हिस्सा ही चावल होता है, जो मुख्य रूप से स्टार्च से बना होता है। बेशक चावल और अन्य अनाज को सीधे उपयोग में नहीं लाया जा सकता। कटे हुए धान को खाने योग्य बनाने के लिए कई विधियां हैं। इसमें मिलिंग एक प्रक्रिया है, जिसमें चावल के ऊपरी खोल और भूसी को हटाकर सफेद दाना निकाला जाता है। यदि चावल को अत्यधिक पॉलिश किया जाता है तो उसकी ऊपरी परत में मौजूद सभी पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। परंतु इसके साथ ही पाचन को सरल बनाने के लिए कुछ हद तक पॉलिशिंग करना भी जरूरी होता है। हालांकि ब्रान यानी भूसी में अत्यंत पोषक तत्व होते हैं, इसमें फाइबर और फाइटिक एसिड भी पाए जाते हैं, जो कि पोषक तत्वों को शरीर में अवशोषित नहीं होने देते। जब तक ब्रान को निकाला नहीं जाता, हमारे शरीर में मिनरल, कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन समाहित नहीं हो पाते हैं। बेहतरीन चावल वह होते हैं जिनमें भूसी के पोषक तत्वों के साथ अन्य पोषक तत्व भी समाहित होते हैं। पोषण की दृष्टि से कम पॉलिश किए गए चावल ही बेहतर होते हैं। एक और पहलू जो चावल पकाने को प्रभावित करता है, वह है पुराने चावल। चावल जितने पुराने होंगे उतने ही अच्छी तरह पकेंगे। धान को भाप से पकाना, लगातार भाप लगाना और आंशिक रूप से उसना या पारबॉइल करना चावल को पुराना बनाने के कुछ विकल्प है। चावल को केवल पकाकर ही नहीं खाया जाता। चावल शायद एकमात्र ऐसा अनाज है जो हमें 80 से भी अधिक उत्पाद प्रदान करता है। अपने आसपास देखें तो आपको मुरमुरे, खील, पोहा, जिसे अवलकी भी कहते हैं, चावल का आटा, खमरीकृत उत्पाद जैसे इडली, डोसा, एक्सट्रूडेड उत्पाद जैसे नूडल्स, पास्ता, पापड़ और सेवइयां भी मिलेंगे। इसके अलावा चावल या धान से राइस ब्रान ऑयल, राइस हल्स, राइस स्टार्च, ब्रोकन राइस और अन्य कई उत्पाद भी बनते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि यह एक अद्भुत फसल है।
अगला विषय है जीवन को ऊर्जा देने वाली शर्करा। क्या आप जानते हैं कितने तत्वों को मिलाकर एक मानव शरीर का निर्माण होता है? यदि कोई भी इस प्रश्न को पूछता है तो इसका उत्तर सरल है, 4। जी हाँ, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। यदि मानव शरीर को उसके घटकों में विभाजित करें तो आपके पास केवल 4 तत्व होंगे, बाकी तत्व नगण्य हैं। यह आश्चर्य की बात है ना कि प्रकृति केवल इन 4 तत्वों के साथ कई प्रकार के रूप ले सकती है। ये तत्व हमारे शरीर में मौजूद सभी रसायनों का निर्माण करते हैं। आपको बता दें कि शर्करा, प्रोटीन और वसा वे स्तंभ यानी कि पिलर्स हैं जिन पर संपूर्ण जीवन प्रणाली निर्भर रहती है। शर्करा को कार्बोहाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है। कार्बोहाइड्रेट, यह नाम 2 शब्दों कार्बन और हाइड्रेट से लिया गया है, क्योंकि पहले यह माना जाता था कि सभी कार्बोहाइड्रेट कार्बन के हाइड्रेटेड यौगिक हैं। ऐसा मुख्य रूप से इसलिए माना जाता था क्योंकि यदि आप कार्बोहाइड्रेट यौगिक को तोड़ेंगे तो आपको कार्बन और जल के यौगिक मिलेंगे। रासायनिक तौर पर एक कार्बोहाइड्रेट यौगिक में 1:1 भाग कार्बन व ऑक्सीजन तथा 2 भाग हाइड्रोजन के होते हैं। सबसे सरल सैकेराइड जाहिर है ग्लूकोज है। इसमें 6 कार्बन एटम, 6 ऑक्सीजन एटम और 12 हाइड्रोजन एटम होते हैं। इसलिए जब यह हवा की उपस्थिति में जलता है तो केवल पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। हमारे जीवन में सैकेराइड कई तरह की भूमिका निभाते हैं, इसलिए क्योंकि वे हाइड्रोजन और कार्बन अणुओं की संख्या के आधार पर कई अलग अलग यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा किन्हीं 2 यौगिकों में समान संख्या में कार्बन और हाइड्रोजन अणुओं के होने पर भी उनके अणुओं की व्यवस्था यानी कि अरेंजमेंट अलग अलग हो सकती है। तो इस प्रकार 1 अणु वाले सैकेराइड्स मोनोसैकेराइड्स कहलाते हैं, 2 अणु वाले सैकेराइड डाइसैकेराइड्स कहलाते हैं, एवं ऐसे सैकेराइड्स जो कई अलग अलग प्रकार के छोटे सैकेराइड्स से मिलकर बनते हैं उन्हें बड़े सैकेराइड्स कहा जाता है। इतना ही नहीं, कुछ सैकेराइड्स पानी में घुलनशील होते हैं और कुछ नहीं घुल सकते। कुछ प्रोटीन के साथ ही बंधे रहते हैं और कुछ वसा अणु के साथ। इस तरह की कई विविधताएं इनमें पाई जाती हैं। सैकेराइड्स का एक प्रमुख कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है। जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट यौगिक का विच्छेदन यानी ब्रेकेज होता है तो इसमें से ऊर्जा मुक्त होती है, जिसका उपयोग हम और आप दैनिक कार्यों के लिए करते हैं। ग्लूकोज का प्रत्येक ग्राम जब विभाजित होता है तो हमें 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व भी माना जाता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि भोजन का एक बड़ा हिस्सा सैकेराइड्स है। ऊर्जा देने के अलावा सैकेराइड्स हमारी कई अन्य तरीकों से भी मदद करते हैं। कई जीवों में सैकेराइड्स शरीर को आकार देते हैं। उदाहरण के लिए कॉकरोच के भूरे कठोर खोल में भी एक सैकेराइड होता है जिसे काइटिन कहा जाता है। दूसरी ओर ऐसे लंबे रेशे जो पौधे को लचीला बनाते हैं यानी सेल्यूलोज भी सैकेराइड्स ही होते हैं। और तो और लिग्निन, एक चिपकने वाली चीज जो पौधे की कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का काम करती है, वह भी एक सैकेराइड ही है। अनाज जो कि हमारे भोजन का अभिन्न अंग होते हैं उनमें भी अधिकतर सैकेराइड्स पाए जाते हैं। अनाज में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में होते हैं जो और कुछ नहीं बल्कि छोटे कार्बोहाइड्रेट अणुओं की एक बड़ी श्रृंखला है जिन्हें एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन कहा जाता है। गर्म करने पर स्टार्च आसानी से पचने योग्य हो जाता है। इस तरह भोजन को पकाने से हमें स्टार्च को पचाने में मदद मिलती है जो अन्यथा पच नहीं पाते हैं। चबाने से भी उसी तरह की मदद मिलती है। मुंह में डालते ही मुरमुरे यानी पफ्ड राइस पहले स्वादहीन लगता है और फिर कुछ समय बाद नरम होने पर उसका मीठा स्वाद आने लगता है। जब आप अपने भोजन को चबाते हैं तो आपके मुंह में उपस्थित सलाइवा, जिसे लार कहते हैं, उसकी उपस्थिति में एमाइलोज ग्लूकोज में बदल जाता है। तो इस प्रकार आप समझ ही गए होंगे कि अगर आप अच्छी तरह से अपना भोजन चबा कर खा रहे हैं तो आपकी पाचन प्रक्रिया आसान हो जाती है। कुछ अन्य सैकेराइड्स जैसे दूध में लैक्टोज, कपास के रेशे में सेल्यूलोज, जानवरों के यकृत यानी लिवर में ग्लाइकोजन, लकड़ी में लिग्निन, कीटों के खोल में काइटिन, सभी कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न रूपों के उदाहरण हैं। जानवरों की तुलना में पौधों में अधिक सैकेराइड्स होते हैं। जानवरों में शरीर का केवल 5% ही सैकेराइड्स से निर्मित होता है, लेकिन पौधों में 25% तक सैकेराइड्स हो सकते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि सैकेराइड्स जीवन में मिठास भर देते हैं?
आइए अब बात करते हैं खाद्य को आकर्षक रंग प्रदान करने वाली हल्दी के बारे में। बिना स्वाद, गंध और रंग का भोजन किसे पसंद आता है? यह लगभग सत्य है कि हम हर उस चीज का मजा नहीं ले सकते जो फीका हो। यहां तक कि मीठी खीर को भी आकर्षक बनाने के लिए काजू और किशमिश डाले जाते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं कि रंगक खाने को आकर्षक बनाते हैं। खाने व खाने वाले को रंगने के लिए हमारी अपनी हल्दी का प्रयोग कई वर्षों से किया जाता रहा है। आखिर इस पीले पाउडर में ऐसा क्या है जो भोजन को आकर्षक रंग देता है? हल्दी, जैसा कि हम सब जानते हैं, करक्यूमा लोंगा नामक कंद वाले पौधे से उत्पन्न होता है। यह पौधा अदरक के पौधे जैसा ही होता है और जिंजेबरेसे नामक परिवार से संबंधित है, जिसके अंतर्गत लिली भी आती है। इस परिवार के 100 विषम पौधे अपनी जड़ों पर कंद उगाते हैं, जहां ये आहार इकट्ठा करते हैं। हल्दी का कंद भी इस प्रकार आहार इकट्ठा करता है। यह पौधा उष्णकटिबंधीय नम जलवायु में भुरभुरी मिट्टी में उगता है। प्रकंदों के प्रसंस्करण के दौरान इन्हें उबालना, धूप में सुखाना, सफाई और पॉलिश करने जैसे विभिन्न चरण इसमें शामिल होते हैं। इसके पश्चात प्रकंदों को मसाले के रूप में उपयोग करने के लिए हल्दी का पाउडर तैयार किया जाता है। आयुर्वेद में हल्दी के औषधीय गुण एवं उनके प्रयोग का उल्लेख किया गया है। ऐसा माना जाता है कि हल्दी का पौधा पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में उत्पन्न हुआ और यहीं से भारत के अन्य क्षेत्रों और दक्षिण पूर्वी एशिया में इसका विस्तार हुआ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हल्दी की तेज गंध और गाढ़ा रंग इसे आकर्षक बनाता है, सूखी हल्दी का अधिकतर भाग स्टार्च होता है। इसमें 8.6% प्रोटीन, 8.9% वसा, 63% कार्बोहाइड्रेट और 6.9% फाइबर होते हैं। इसमें न्यूनतम मात्रा में खनिज और पानी में घुलनशील विटामिन जैसे थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, एस्कॉर्बिक एसिड होते हैं। पीला रंग मुख्य रूप से 3 रंग यौगिक हैं। ये हैं करक्यूमिन, डीमिथॉक्सी करक्यूमिन और बिस डीमिथॉक्सी करक्यूमिन। जबकि करक्यूमिन मुख्य रंजक है एवं डीमिथॉक्सी करक्यूमिन और बिस डीमिथॉक्सी करक्यूमिन इसके अन्य रूप हैं, जिनकी संरचना थोड़ी भिन्न होती है। इसी प्रकार स्वाद भी सिर्फ एक रसायन से नहीं होता। इसमें 4 रसायन होते हैं जो एक साथ मिलकर हल्दी को विशिष्ट गंध देते हैं। ये हैं टर्मिरॉन, सिनियोल, जिंजरॉन एंड फिलांड्रेन। खाने में हल्दी के रंग का उपयोग पाउडर या तरल रूप में किया जा सकता है। इसके तरल रूप को ओलियोरेसिन कहा जाता है। यह कंद से रंग और स्वाद की यौगिकों को निकालकर तैयार किया जाता है। इसके लिए ऐसे रसायनों का उपयोग किया जाता है जिनमें ये यौगिक घुल सकें। बाद में सॉल्वेंट्स वाष्पित हो जाते हैं और केवल सांद्रित रंग और स्वाद यौगिक रह जाते हैं। हालांकि यह गाढ़ा पीला रंग तेज धूप में नहीं टिक पाता और तेज रोशनी या गर्मी में फीका पड़ जाता है। तो फिर यह खाने में किस प्रकार रहता है? इसका एक कारण है एसिटिलीन का उपयोग, जो पीएच को बदलता है और इस प्रकार रंग को लुप्त होने से बचाता है। रसम या सांभर में प्रयोग होने वाले नींबू के रस के बारे में आप सभी जानते हैं। करक्यूमिनोइड्स में कई लाभकारी गुण निहित हैं जिनकी सूची बहुत लंबी है। वे हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी इंफ्लेमेटरी, न्यूरोप्रोटेक्टिव, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी कैंसर, एंटी डायबिटिक। इसके अलावा ये लीवर और किडनी को भी नुकसान होने से बचाते हैं। साथ ही एंटी प्रोटोजोल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी एचआईवी, कार्डियो प्रोटेक्टिव तथा कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं। अतः इसे केवल करी मसाला या खाद्य को रंग प्रदान करने वाला कहना क्या उचित होगा?
पीने का पानी क्या है? एक साक्षात्कार। हम सभी जानते हैं पानी क्या है, क्या सच में हम जानते हैं? निश्चित रूप से नहीं। वैज्ञानिकों ने पानी को डिस्टिल्ड वाटर, मिनरल वाटर, पोर्टेबल वाटर यानी पीने योग्य पानी और पैकेज्ड वाटर जैसे विभिन्न रूपों में विभाजित किया है। ये किस प्रकार अलग है? इस विषय पर केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान के वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी डॉ. एम. ए. श्रीनिवास से हमने बातचीत की। आइए सुनते हैं इसका हिंदी रूपांतरण। वैज्ञानिक पीने के पानी को किस प्रकार परिभाषित करते हैं और क्यों?
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पानी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। इसके साथ ही यह जानना भी जरूरी है कि हम हर तरह का पानी नहीं पी सकते। हमें पीने के लिए स्वच्छ और सुरक्षित पानी की आवश्यकता होती है। पीने योग्य पानी को पोर्टेबल वाटर भी कहा जाता है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी दस्तावेज में इसकी विशेषता को बहुत अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है। इसमें पानी के सभी पहलुओं पर विचार किया गया है, जैसे इसका स्वरूप, स्वाद, रासायनिक विशेषताएं जैसे पीएच, मैलापन, कठोरता और उपभोक्ता के लिए सुरक्षा आदि। पीने योग्य पानी संबंधी विशेष निर्देश हेतु यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस प्रकार पीने योग्य पानी इस दस्तावेज में परिभाषित निर्देशों के अनुसार होना चाहिए। यदि पानी की सुरक्षा की बात करें तो इसमें सूक्ष्म जीवों, भारी धातुओं, कीटनाशकों और अन्य दूषित पदार्थों पर विचार किया जाता है। सामान्यतः लोग रंग, स्वाद और गंध पर ध्यान देते हैं। हालांकि पीएच और पानी की कठोरता भी एक मुख्य पहलू है। वास्तव में पानी पीने योग्य होने के लिए 35 मानक वर्णित हैं। पीने के पानी को हर तरह से इन सभी मानकों को पूरा करना चाहिए, लेकिन व्यवहारिक रूप से दूर दराज के इलाकों में जहां पानी का वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध नहीं होता, ऐसी स्थिति में इन सभी मानकों को पूरा कर पाना संभव नहीं है।
सूक्ष्म जैविकीय सुरक्षा यानी माइक्रोबायोलॉजिकल सेफ्टी से क्या मतलब है?
इसका मतलब यह जानने से है कि पानी में कितने रोगाणु हैं। BIS मानक में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि पीने योग्य पानी के नमूने यानी सैंपल में एस्चेरिशिया कोली बैक्टीरिया नहीं होने चाहिए। आमतौर पर सैंपल के लिए 100 मिलीलीटर पानी का उपयोग किया जाता है। यदि हम किसी स्रोत से 100 मिलीलीटर पानी के 100 नमूने लेते हैं तो उनमें से 95% में कोई कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए। पानी में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की उपस्थिति यह दर्शाती है कि वह दूषित है। इसलिए संदूषण यानी कंटेमिनेशन के स्रोत की पहचान की जानी चाहिए और संदूषण से बचने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए। और जहां तक पीएच का संबंध है, यह 6.5 और 8.5 के बीच होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि पानी न ही बहुत अम्लीय और न ही बहुत क्षारीय होना चाहिए। आपको यह भी बताना चाहूंगा कि पानी में कठोरता भी जरूरी है। पानी की कठोरता मुख्य रूप से कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों की उपस्थिति के कारण होती है। पीने के पानी में ये दोनों लवण प्रति मिलियन 300 भाग से कम होने चाहिए। प्रत्येक रासायनिक और लवणों की उपस्थिति को मानकों द्वारा अच्छी तरह परिभाषित किया गया है। कुछ लवण पानी में जरूरत से ज्यादा होने पर हानिकारक भी हो सकते हैं।
क्या होगा अगर पानी इन मापदंडों को पूरा नहीं करता?
जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि यदि किसी स्रोत विशेष से लिया गया पानी इन मानकों को पूरा नहीं करता या उसमें सूक्ष्म जीव शामिल हैं, तो यह पानी पीने योग्य नहीं है। ऐसे पानी को पीने योग्य बनाने के लिए उपचारित करना बहुत जरूरी है, जैसे छानकर, क्लोरीन डालकर या अन्य तरीकों द्वारा। सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि पैक किए गए पानी दो प्रकार के होते हैं, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर और पैकेज्ड नेचुरल मिनरल वाटर। दोनों ही प्रकार का पानी पीने योग्य होता है। साथ ही इसको BIS मानकों को पूरा करना चाहिए। दोनों ही प्रकार का पानी पीने योग्य होता है, साथ ही इसको BIS मानकों को पूरा करना चाहिए। लेकिन उनका यह नाम इस बात पर निर्भर करता है कि पानी किस स्रोत से प्राप्त हुआ है। हमें यह याद रखना चाहिए कि पीने योग्य पानी की तुलना में पैकेज्ड पानी के मापदंड अत्यधिक कठोर हैं। इसे IS 14543 2004 के तहत परिभाषित किया गया है। पैकिंग करके पानी बेचने के लिए किसी भी निर्माता को BIS से प्रमाणन और FSSAI से लाइसेंस लेना होता है। BIS और FSSAI दोनों मानक एक समान होते हैं। इसके अनुसार पैकेजिंग सामग्री बोतल, ग्लास या धातु खाद्य ग्रेड का होना चाहिए। FSSAI पैक किए गए पानी को दो भागों में विभाजित करता है, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर और पैकेज्ड नेचुरल मिनरल वाटर। पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का मतलब है कि कोई भी पानी जो पैक करके बेचा जाता है, बेशक इसे मानकों को पूरा करना चाहिए, यह आपके नल, कुओं, नदियों और अन्य स्रोतों से हो सकता है, जिसे छानकर रिवर्स ऑस्मोसिस, ओजोनेशन, क्लोरीनेशन आदि विभिन्न तरीकों द्वारा उपचारित किया जाता है। वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक मिनरल वाटर अलग इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ खनिज लवण होते हैं और यह भूमिगत जल से सीधे प्राकृतिक या ड्रिल किए गए स्रोत जैसे हैंडपंप आदि से प्राप्त होता है। यह सार्वजनिक जल आपूर्ति से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके अलावा इसे किसी भी प्रकार के प्रदूषण से बचाने के लिए पूरा ध्यान रखा जाता है। तो जो आपको मिलता है वो प्राकृतिक होता है, इसका मतलब इसे बहुत ही शुद्ध स्थिति में एकत्र किया जाना चाहिए, जहां यह किसी भी परिस्थिति या मौसम से प्रभावित ना हो सके। इसे उसी स्थान पर पैक किया जाना चाहिए जहां इसे प्राप्त किया जाता है और किसी भी तरह से इसका उपचार नहीं किया जाना चाहिए। और उपभोक्ता होने के नाते हमें यह याद रखना चाहिए कि हर पीने योग्य पानी पैकेज्ड वाटर पर, चाहे वह किसी डिब्बे में हो या बोतल में, लेबल जरूर होना चाहिए। उपचारित कर पैक किए गए पानी पर पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का लेबल होना चाहिए। इसी तरह मिनरल वाटर के हर पैकेज पर बड़े अक्षरों में नेचुरल मिनरल वाटर का लेबल होना चाहिए। यहाँ अक्षरों के आकार भी विनिर्दिष्ट होते हैं।
तो यह था डॉक्टर M.A. श्रीनिवास से साक्षात्कार का हिंदी रूपांतरण, जिसे प्रस्तुत किया श्री राजदीप सिंह ने।
तो श्रोताओं, यह था हमारी थाली टेल्स के भाग एक का प्रथम अंक। आशा है आप सभी ने इसका आनंद उठाया होगा। इसकी पटकथा लिखी है सुश्री अक्षता, श्री कोलेगल शर्मा और डॉक्टर J.R. मंजुनाथ ने, जिसका हिंदी अनुवाद किया है और अपनी आवाज दी है सुश्री अनीता S., श्री राजदीप सिंह और सुश्री सुरुचि नौटियाल ने। संगीताभार श्री शिव गणेश यूट्यूब। थाली टेल्स CSIR CFTRI मैसूरू द्वारा तैयार, निशुल्क वितरित की जाने वाली एक ऑडियो पत्रिका है। आप थाली टेल्स को किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। श्रोता खाद्य और उससे संबंधित मुद्दों पर अपने प्रश्न और सुझाव व्हाट्सएप के माध्यम से सीधे 08212515910 पर भेज सकते हैं या हमारी वेबसाइट www.cftri.com पर रजिस्टर कर सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए आप सोमवार से शुक्रवार तक 08212515910 पर कॉल भी कर सकते हैं। थाली टेल्स के अगले अंकों में आपके प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। हमारी अगली मुलाकात 2 सप्ताह बाद होगी। तब तक के लिए इजाजत दें। नमस्कार।